हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। लेकिन फिर पुष्टि करने के लिए उसने और करण ने एक साथ ही नजरें उठाईं। दरवाजे पर ऋषभ खड़ा था। करण ने उसे पहचाना, लेकिन इस वक्त ऋषभ पिछली बार से थोड़ा बेहतर हालत में लग रहा था। शिविका ने मानो पुष्टि करने के लिए ही पूछा, ऋषभ, तुम यहाँ ऑफिस में आज ये कैसे हो गया? जरूर कोई बड़ी बात है, नहीं तो तुम यहाँ इस तरह से नहीं आते। बड़ी बात ही है, कम से कम मेरे लिए तो, क्योंकि आपने जिस तरह से ये बात मुझसे छुपाई है, मुझे लगता है आपके लिए ये बहुत छोटी बात होगी। ऋषभ ने अपने दोनों हाथ सामने की ओर बांधते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और चलते हुए कैबिन के अंदर आ गया। उसकी बात सुनकर शिविका और करण दोनों ही भ्रम से एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि ऋषभ की बातों का मतलब न तो शिविका को समझ आया और न ही करण को। शिविका ने पूरी बात जानने के लिए ऋषभ से पूछा, क्या कहना चाहते हो तुम ऋषभ, साफ साफ बोलो ना। शिविका के इस सवाल पर ऋषभ ने करण की ओर एक नज़र देखा और फिर शिविका की ओर। वे दोनों ही उसकी बात का मतलब समझ गए। वह शिविका से अकेले में बात करना चाहता था, जरूर कोई महत्वपूर्ण या निजी बात थी। ये समझते हुए करण वहाँ से जाने लगा। शिविका ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको करण, हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मैम, मुझे लगता है आपको पहले अपने भाई से बात कर लेनी चाहिए, शायद कोई ज़रूरी बात है। हम इसके बाद काम पूरा कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। करण भी जानना चाहता था कि आखिर ऋषभ को अचानक शिविका से क्या बात करनी है, लेकिन फिर भी उसने व्यावसायिक रूप से सहायता की और चुपचाप कैबिन से बाहर चला गया। करण के बाहर जाने के बाद शिविका अपनी कुर्सी से उठी और आगे बढ़कर ऋषभ के सामने आकर खड़ी हुई। बताओ क्या हुआ है अब, जरूर कोई बड़ी बात होगी, नहीं तो तुम इस तरह से यहाँ ऑफिस कभी नहीं आते। हाँ बिल्कुल, मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। मुझे आज ऐसी बात पता चली जिस पर पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और अगर ये सच है ना दी, तो सच में आप भी बिल्कुल पापा की तरह ही होती जा रही हो। मेरा कोई मायने नहीं रखता, न आपकी जिंदगी में भी। करण ने पहले तो गुस्से में शिकायत करते हुए ये सारी बातें कहीं, लेकिन बाद में वह बच्चों की तरह नाराज होने वाला चेहरा बनाकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया, दोनों हाथ सामने की ओर बांधकर। देखो ऋषभ, ये पहेलियां बुझाना बंद करो, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। इसलिए सीधे बताओ, कौन सी बात और क्यों मुझे पापा से तुलना कर रहे हो? आखिर ऐसा क्या बिगाड़ दिया मैंने तुम्हारा? शिविका फिर से उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसने अपने बाएं हाथ से ऋषभ का चेहरा ऊपर उठाया। ऋषभ की नज़र उसके बाएं हाथ की अनामिका में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी, जो पहले शिविका के हाथ में नहीं थी। वह एकदम नई हीरे की अंगूठी लग रही थी, इसलिए उसने तुरंत ही शिविका का हाथ पकड़ लिया और अंगूठी पहनी हुई उंगली की ओर इशारा करते हुए बोला, ओ वाह, नई हीरे की अंगूठी, कितनी अच्छी लग रही है दी, ये कब ली आपने? ऋषभ की बात सुनकर शिविका ने एकदम से उसका हाथ अपने हाथ से वापस ले लिया और बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओ प्लीज कम ऑन ऋषभ, मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरी अंगूठी के बारे में पूछने यहाँ नहीं आए हो। हाँ, अंगूठी के बारे में नहीं, लेकिन शायद जिस वजह से ये अंगूठी आपकी उंगली में है उसके बारे में पूछने तो आया ही हूँ, और उस बारे में जानने भी। दी, सच में सगाई कर ली आपने, मेरे बिना ही, अपने इकलौते भाई के बिना? शिविका को अब जाकर उसकी बात का पूरा मतलब ठीक तरह से समझ में आया। उसकी बात सुनकर वह एकदम से बोली, ऋषभ प्लीज मुझे समझाने दो। अच्छा, तो इस बात की भी व्याख्या पहले से तैयार है आपके पास, बस आप मेरे पूछने का इंतजार कर रही थी? ओके गुड कूल, अब आप किसका इंतजार कर रही हो, बस समझा दो। ऋषभ कुर्सी से उठकर शिविका के सामने खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ सामने की ओर रखते हुए एकदम अड़ियल अंदाज में उससे पूछने लगा। उसके इस सवाल पर शिविका ने पहले अपना बायां हाथ अपने सिर पर रखकर अपना सिर पकड़ लिया और फिर अपना हाथ चेहरे के आगे करते हुए उंगली में पहनी हुई अंगूठी देखते हुए बोली, ऋषभ देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सगाई मेरी खुशी से नहीं हुई है। पापा ने मुझे जबरदस्ती और भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया है सगाई और शादी के लिए। इसके अलावा वे नहीं चाहते थे कि तुम उस हालत में वहाँ उन सब के सामने आओ, क्योंकि तुम जानती हो इससे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, आप तो हमेशा से ही पापा की अच्छी बेटी और आज्ञाकारी लड़की हो, जो उनकी सारी बातें मानती हो। ठीक है, मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप खुद ही सगाई नहीं करना चाहती तो फिर क्यों खुद को जबरदस्ती कर रही हो? और प्लीज़, एक बार अगर आप मुझे बताती तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाता। ऋषभ ने उसे ताना मारने वाले अंदाज में कहा, लेकिन साथ ही उसे अपनी बहन से हमदर्दी भी थी। क्या मदद करोगे ऋषभ तुम मेरी? भगवान के लिए पहले अपनी जिंदगी और अपनी हालत सुधार लो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि अगर अगली बार ऐसा कोई भी समारोह हो तो तुम उसमें शामिल होने लायक रहो, कम से कम सीधे खड़े हो पाओ। शिविका बहुत ही निराश होकर ये सब कुछ बोली और एक तरह से वह ऋषभ को वो सब कुछ याद भी दिला रही थी जो कि उसके अंदर की कमियाँ थीं। शिविका की ये सारी बातें सुनकर ऋषभ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वह एक तरह से अपना ही मजाक उड़ाते हुए बोला, मुझे भी अपने बारे में ये सब कुछ याद है दी, और आप मुझे थोड़ा पहले बता देना तो मैं तैयार होकर आऊँगा, बिल्कुल अच्छा बेटा बनकर, जैसा आपको और पापा सबको पसंद है। और इसके अलावा शायद कुछ नहीं हो सकता मेरा, लेकिन पापा से भी अच्छी तरह ताने मारती हो आप, ऋषभ ने उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शिविका ने अपने मन में कहा, ओ शिट, ये सब क्या बोल दिया मैंने, अब ऋषभ मुझे भी पापा की तरह अनदेखा करने लगेगा और मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं करेगा, न अपनी समस्याएं और न ही कोई जरूरत की बात, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऋषभ प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं कोई ताना नहीं मार रही हूँ तुझे, बस मैं तेरा भला चाहती हूँ यार, थोड़ा सा सुधर जाएगा तो तेरा क्या चला जाएगा। अरे रहने दो मेरा, और बधाई हो तुम्हारी सगाई के लिए। वैसे मुझे होने वाले जीजू से नहीं मिलवाओगी क्या, या फिर उनसे मिलने लायक नहीं हूँ मैं अभी भी? ऋषभ उसी तरह तंज भरे लहजे में बोला और मुड़कर दरवाजे से बाहर की ओर जाने लगा। तभी पीछे से शिविका की आवाज उसके कानों में पड़ी, ऋषभ प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे कहने का वो सब मतलब नहीं था, लेकिन अरे आप क्यों माफी मांग रही हो दी? कोई बात नहीं दी, मैं शायद इसी लायक हूँ और आपने वैसे भी सब कुछ सच ही तो बोला है, लेकिन एक बार मिलवा देना मुझे भी, शादी से पहले आकर देख लूंगा मेरी बहन के लायक है कि नहीं हो लड़का। इतना बोलकर ऋषभ दरवाजा खोलकर कैबिन के बाहर निकला, लेकिन वह करंट से टकरा गया जो शायद वहां पर अंदर ही आने वाला था। मुझे माफ करना भाई, इतना बोलते हुए ऋषभ ने नजर उठाकर करण की ओर देखा, क्योंकि करण की लंबाई ऋषभ से ज्यादा है और वह इस वक्त उसके एकदम सामने और काफी करीब खड़ा था। उसका चेहरा देखकर उसे कुछ याद आया और उसने थोड़ा सा सोचते हुए करण से पूछा, हे एक मिनट, हम पहले मिले हैं क्या? कैबिन का दरवाजा खुला हुआ था और करण ऋषभ को इस तरह दरवाजे पर खड़े होकर बात करते देख शिविका थोड़ी घबरा गई। वह नहीं चाहती थी कि ऋषभ को ये बात करण या फिर किसी और से पता चले। वह खुद ही करण और ऋषभ को आधिकारिक रूप से मिलवाना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे ये भी पता था कि ऑफिस इसके लिए बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। ऋषभ की बात का जवाब देते हुए करण ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ निश्चित रूप से, और एक बार से ज्यादा।
सच में? लेकिन क्यों? मुझे याद नहीं आ रहा है। ऋषभ अपने दिमाग पर जोर डालते हुए याद करने की कोशिश करने लगा। तभी शिविका वहां पर उन दोनों के बीच में आ गई और ऋषभ की बात का जवाब देते हुए बोली, मेरा निजी सहायक है ये ऋषु, और घर पर भी आया है एक दो बार, तभी देखा होगा तुमने, और वैसे भी तुम होश में ही कब होते हो जो तुम्हें सारी बातें याद रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दी याद दिलाने के लिए, ऋषभ ने फिर से उसी तरह तंज भरे लहजे में जबरदस्ती मुस्कुराकर शिविका की ओर देखा और बिना रुके वहां से चला गया। शिट, मैंने उसे फिर दुख पहुंचाया, पता नहीं कब और कैसे पता चला उसे इस बारे में। शिविका गुस्से में केबिन के दरवाजे पर अपनी हील से लात मारते हुए बोली, शांत रहो, इस तरह से दरवाजे पर गुस्सा निकालकर कुछ नहीं होने वाला, हाँ शायद तुम्हारी हील टूट जाए। और किस बारे में पता चल गया उसे? करण ने शिविका को शांत करवाने की कोशिश करते हुए पूछा। उसकी बात का जवाब देने से पहले शिविका ने इधर उधर देखा। इस नाटक की वजह से ऑफिस के कर्मचारी और बाकी सारे लोगों का ध्यान उसके केबिन की ओर था और साथ ही वे सब आपस में फुसफुसा भी रहे थे। शिविका ने तेज आवाज में उन सब लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, इधर क्या देख रहे हो, कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों को, और गॉसिप करने की तनख्वाह मिलती है क्या? शिविका को गुस्से में चिल्लाते हुए सुनकर बाकी सब जल्दी से उन दोनों की तरफ से नजरें हटाकर अपने अपने काम में लग गए। शिविका करण का हाथ पकड़कर उसे केबिन के अंदर ले जाने लगी। क्या हुआ? अब बाकी कर्मचारियों पर क्यों चिल्लाई? उन्होंने क्या किया? अब इस तरह का पारिवारिक नाटक होगा ऑफिस में तो लोग तो देखेंगे ही और मजा भी लेंगे। लेकिन तुम ये बताओ, किस बारे में पता चल गया ऋषभ को? करण ने एकदम सीधे ही उससे ये सवाल किया। शिविका बहुत ही निराशा से अपना सिर नीचे करके खड़ी हुई फर्श की ओर देख रही थी और उसी तरह से बोली, हमारी सगाई के बारे में। करण को शायद शिविका से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा सा हैरान हो गया और हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे थोड़ी देर लगी ये बात समझने में और फिर वो बोला, तो क्या तुम अपने भाई से भी इस बात को गुप्त रखने वाली हो? गंभीरता से, अब तक तुमने उसे अपनी सगाई के बारे में नहीं बताया। वैसे हमारी सगाई में भी वो नहीं था और तब मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हारा कोई भाई भी है। लेकिन उसके बाद करण अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही शिविका उसकी बात काटते हुए बोल पड़ी, नहीं, ऐसा नहीं है। क्रमशः